धवला पुस्तक 15 लेक्चर नंबर 8
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् जय भुवने कतिलो तिलुवन कलिकल सुभुण वावारो संति यरो संति जिनो पक्कमाणु योग कत्तारो।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। यहाँ जो संत कब्ब कम्म गभ्येसु कहा है ना, शेष 18 अनुयोग द्वारों में से अभी हमारी प्रक्रम अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है। 15वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 37 पर हम आ गए। नीचे का पैराग्राफ वहां से हम पढ़ेंगे। देखो, प्रक्रम यानी वो कर्म का बंध होता है उस समय उसकी प्रदेशों की संख्या, तो उसका संचय प्रचय, उसको प्रक्रम कहा है। उस समय क्या पोजीशन है उसकी बात यहां हो रही है। तो हमने देखा था उत्कृष्ट अलग अलग प्रकृतियों में कब होता है, तो मूल प्रकृतियों में उत्कृष्ट कब होता है, तो जहां 6 कर्म बनते हैं, आयु और मोह बिना। मोहनीय का उत्कृष्ट कहां होगा, जहां 7 कर्म बनते हैं। मूल प्रकृति को लेना है, बाकी कंडीशन वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और उत्कृष्ट योग वो सब लगा लेना। आयु का उत्कृष्ट जब आयु बन रही तभी, 8 कर्मों का बंद हो रहा है। उसके बाद हमने उत्तर प्रकृतियों में उत्कृष्ट का अल्प महत्व देखा था, कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। अब यहां अभी अपना विषय जो चलेगा जघन्य प्रकृति प्रक्रम, पेज नंबर 37 नीचे का पैराग्राफ। अभी जघन्य के साथ कंपैरिजन करना है। अब जघन्य के लिए पहले हमको मालूम नहीं ना जघन्य कब होगा क्या होगा। अब जघन्य कब होगा, जब योग मिनिमम होगा। मूल प्रकृति में तो सोचना आसान है, देखिए तो कब होता है योग कम कब होता है, नहीं 13वां तो संगी पंचेंद्रिय योग जो मिथ्या दृष्टि को होता है वो 13वें में भी हो सकता है। हाँ सूक्ष्म योग, और वो भी उपपाद योग जघन्य होगा, पर उपपाद योग में तो आयु तो नहीं बंधेगी। तो हम थोड़ा देख लेते कि जघन्य का स्वामित्व पहले मूल प्रकृतियों में देखेंगे, फिर उत्तर प्रकृतियों में देखेंगे। ये महाबंध की 6ठी पुस्तक है, बाईस से 28 पहले निकालना। कल हमने डायरेक्ट उत्तर प्रकृतियों में देखा था, अभी जरा मूल प्रकृतियों में देखकर फिर उत्तर प्रकृतियों की बात करेंगे। देखो जघन्य का प्रकरण 22 पेज पर है। तो 7 कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का कौन स्वामी है वो पूछा गया था, तो कहते अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव अपर्याप्त है, प्रथम समय में तद्भस्त हुआ है, क्योंकि वहां उपपाद योग है ना, और वो मिनिमम किसके होगा, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, इसलिए उसको लिया। उसमें भी बहुत वेरिएशन हो गया अलग अलग जीवों के, उसमें भी जिसके जघन्य योग है उस जीव को ले लिया। आयु कर्म का कौन होगा, तो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव क्षुल्लक भव ग्रहण के तृतीय त्रिभाग के प्रथम समय में आयु बंद कर रहा है, उस समय उसका जघन्य है। क्योंकि जो कहते हैं कि 2/3 ने तब तक तो उसके तो एकांत वृद्धि होती है, तो वहां परिणाम योग में से भी वहां मिनिमम होगा, और वहां जो आयु बंध शुरू करता है उसका आयु बंध का जघन्य प्रदेश बंध होगा। अभी हमके उसको इसमें आदेश वगैरह में नहीं देखना है, अभी हम उत्तर प्रकृतियों की बात देखते। कल कहा 92 कहीं पर देखा था ना हमने, 92 पर जघन्य स्वामी तो 113 पर है, 113 महाबंध पुस्तक छठी है। हाँ देखो जघन्य का प्रकरण नीचे के पैराग्राफ में, ओग से 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 2 वेदनीय मिथ्या, तो 16 कष्ट। अभी जो निगोद को जो जो बनती है उसका जघन्य तो वहीं पर बताएंगे। तो 5 ज्ञानावरण है, 9 दर्शनावरण वहां तो बनती है, 2 वेदनीय, 7 आशा तो दोनों बन सकती है, मिथ्या तो बन ही रहा है वहां पर, 16 कषाय, 9 कषाय, किसी को कौन सी किसी को कौन सी, एट ए टाइम नहीं बंधेगी, परंतु वहां बन सकती है ना सभी जीवों को, नीच गोत्र उच्च गोत्र 5 अंतराय के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है। देखो यहाँ नाम कर्म को नहीं लिया यहाँ पर, उसके बाद में बताएंगे, क्योंकि नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृति एट ए टाइम बनती है। उत्कृष्ट के लिए हमने क्या देखा था, जहां मिनिमम बंधेगी वहां उत्कृष्ट होगा, अब यहाँ उल्टा लेना पड़ेगा, जहां मैक्सिमम बनती है वहां तो उसके खाते में कम द्रव्य जाएगा। तो कहते जघन्य योग से युक्त, पेज नंबर हम महाबंध में से पढ़ रहे, ये जघन्य का स्वामित्व देख रहे। पहले हमने मूल प्रकृतियों में देखा तो सातों कर्मों का कहां जघन्य होता है, तो जघन्य उपपाद योग सूक्ष्म निगोद वाला उसका, और आयु का वो क्षुल्लक भव वाले के अंतिम तृतीय त्रिभाग के पहले समय में जो आयु बंद करता है उसके। अब हम उत्तर प्रकृतियों में देख रहे हैं, उत्तर प्रकृतियों में देखो ज्ञानावरण सभी लिए, दर्शनावरण के सभी लिए, वेदनीय के दोनों लिए, मिथ्या तो 16 कषाय, 9 कषाय, तो ये भी सभी ले लिए ना, 17 और 9 26 सभी ले लिए। गोत्र में से नीच गोत्र उच्च गोत्र दोनों लिए और 5 अंतराय। जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, ये किसको छोड़ा अश्विन भाई? नाम और आयु को छोड़ा, बाकी सबको लिया। तो जघन्य योग से युक्त और जघन्य प्रदेश बंध करने वाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्भवस्त सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव उक्त प्रकृतियों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। यहां तक समझ में आई बात? आसान है ना, जैसे हमने मूल में देखा वैसे यहां पर उसकी सभी प्रकृति। अभी कौन रहेगी उसकी बात करेंगे। आयु को छोड़ा था तो नरकायु और देवायु के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अब नरकायु और देवायु बांधने वाले तो पंचेंद्रिय जीव हो गए, निगोद को या कोई एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय को नहीं ले सकते, तो पंचेंद्रियों में योग कम किसके होगा? असंगी पंचेंद्रियों को, उसका उपपाद तो नहीं ले सकते क्योंकि वहां तो किसी की आयु बनती नहीं है। तो देखो यहां पर हम पढ़ेंगे अभी कि वो 8 प्रकार का, मैंने 8 कर्म बांध रहा है, जब आयु बनती है तो 8 बंध का बंध कर रहा है। जघन्य योग से युक्त और जघन्य प्रदेश बंध में अवस्थित अन्यतर असंगी पंचेंद्रिय और घोलमान जीव। घोलमान का अर्थ होता है परिणाम योग वाला, एक होता है उपपाद योग, एक होता है एकांत वृद्धि और बाद में वो परिणाम योग, उसी का दूसरा नाम है घोलमान योग। अब तीर्यंचायु और मनुष्यायु का जघन्य का कौन स्वामी होगा? तो कहते कि अभी तीर्यंचायु मनुष्यायु मिनिमम योग से बांधने वाले तो वो तो सूक्ष्म निगोद भी बांधेंगे, वो बांध तो सकते हैं। तो कहते कि शुल्लक भव ग्रहण के तृतीय भाग के पहले समय में आयु कर्म का बंध करने वाला एक कंडीशन, और जघन्य योग से युक्त अन्यतर सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव उक्त दो आयुओं के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी। ये समझ में आसान है ना, क्योंकि उसके मिनिमम योग वाला वही जीव लिया, और वो मनुष्यायु भी बांध सकता है, तीर्यंचायु भी बांध सकता है, देवायु नरकायु के लिए असंगी पंचेंद्रिय लिया, परिणाम योग वाला लिया, और ये वाला परिणाम योग है परंतु वो पहला समय लेना, तृतीय त्रिभाग का पहला समय। अब नाम कर्म की जो अलग अलग प्रकृतियां उसको बांधने वाले की बात करेंगे। नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी के, अभी जघन्य कब होगा? देखो नरक गति का बंध तो 28 का फिक्स है, उसमें उसके साथ कोई अन्य प्रकृति नहीं बनती। जैसे देवगति के साथ तीर्थंकर भी बन सकती, आहारक भी बन सकती, वैसे यहाँ नहीं है। तो यहाँ उसका 28 का फिक्स है, परंतु ऐसा हो सकता है ना, जब नरक गति बंध रही है तो बिना आयु के बंध रही है, तो 7 कर्म बंध रहे हैं या 8 कर्म बंध रहे हैं, तो जघन्य कब होगा? 8 जब बंध रहे तब। इसलिए कहते हैं कि नाम कर्म की 28 प्रकृतियों के साथ 8 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला। दूसरी कंडीशन, जघन्य योग से युक्त, जैसे नरकायु में असंगी लिया, यहां पर भी असंगी लेना, और वो भी घोलमान जीव, क्योंकि जो नरक गति है वो तो अपर्याप्त अवस्था में कोई नहीं बांध सकता। वैसे देवगति भी नहीं कोई नहीं बांधेगा, परंतु समय दृष्टि बांध सकता है। इसलिए नरक गति की बात अलग करेंगे, देवगति की बात अलग करेंगे। तो उसका जघन्य का स्वामी है। अब तीर्यंच गति वगैरह का जघन्य का स्वामी कौन होगा? तो उसमें वो तीर्यंच गति के साथ बनने वाले औदारिक तेजस्कर्म सबको एक साथ लिया, यानी उसके साथ जो जो बन सकते हैं। मैं अभी पूरी टोटल नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि तीर्यंच गति है, चारों जाति है, औदारिक शरीर वगैरह वगैरह सब। तो कहते हैं नाम कर्म की 30 प्रकृतियों के साथ, क्योंकि उसका उद्योत सहित 30 हो जाती है, आपको याद होगा। तो अगर उद्योत नहीं बनती तो 29 वाला एक पैकेज है नाम कर्म का। अभी हमने उत्कृष्ट के लिए क्या देखा था, वो मैंने 23 वाला बंध देखा था। अभी हमको जघन्य प्रदेश बंध चाहिए, तो मैक्सिमम नाम कर्म की बनती है कब? तो 30 वाले प्रकृति, 30 प्रकृतियों का बंध करने वाला है। तो 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला जघन्य योग से युक्त, और प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तद्धोष, हमने देखा ना, यानी रुजुगति से वहां गया है तो उपपाद योग होगा वहां पर उसका, तो उसका मिनिमम ले लेना है। ऐसा सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त ही जीव लेना, इसके लिए सबके लिए। मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का मिनिमम बंध चाहिए, जघन्य बंध। अभी वो अपर्याप्त वाला तो नहीं लेंगे 25 वाला, तो मनुष्य का रेगुलर जो करने वाला है वो 29 वाला होता है। तो नाम कर्म की 29 प्रकृतियों के साथ 7 कर्म बांधने वाला, और फिर वो भी सूक्ष्म निगोद लेना, उसका उपपाद योग लेना, क्योंकि वो भी मनुष्य गति तो बांध ही सकता है। अब देव गति को बांधने वाला कौन होगा? क्योंकि देव गति वैक्री, उसके साथ वैक्रिक शरीर अंगोपांग सब लेना। हमने क्या देखा था, नरक गति कोई भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं बांध सकता, इसलिए उसको परिणाम योग में लिया था, असंगी पंचेंद्रिय को। अब देवगति बांधने वाला समय दृष्टि पहले समय में देवगति बांध सकता है मनुष्य में? तो पहले समय में उसका उपपाद योग होगा, वो मिनिमम होगा, तो वो जीव लेना जो देवगति का बंध कर रहा है। तो परंतु वो कौन सा लेना है? देवगति तो 28 प्रकृतियों का बंध है, पर यहाँ 29 वाला लेना, देवगति प्लस तीर्थंकर का प्रकृति का। यानी ऐसा जीव लेना है जो नरक या स्वर्ग में से तीर्थंकर प्रकृति के साथ यह मनुष्य में जन्म लिया, वही पहले समय में तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है। अश्विन भाई, यहाँ आहारक वाले को क्यों नहीं लिया? उसका कारण बताओ।
वो ऊपर के गुणस्थान में बनती है,
ऊपर ने कहा
सातवें आश्रम में।
हाँ, देखो यहाँ उपपाद योग यानी पहला समय जन्म का, वहाँ तो मुनि अवस्था नहीं है। आहारक शरीर जो बांधने वाला है, यानी देवगति प्लस आहारक शरीर, वो 30-31 का बंध करने वाले, वो तो मुनिराज हो गए, वो तो पहले समय में संभव नहीं है। इसलिए यहाँ देवगति प्लस तीर्थंकर तो 29 प्रकृतियां होती है, तो उसको बांधने वाला जीव ले लेना। यहाँ सभी प्रकृतियों को नहीं लिया है, शरीर और गति और यशस कीर्ति वगैरह उसकी बात की, फिर भी हम जरा पढ़ लेते हैं। अब जो जो होते हैं ना, एक इंद्रिय वगैरह वगैरह जो निगोद बांध सकता है उसको वहां पर भी ले लेना, और उसमें भी मैक्सिमम प्रकृति बांधने वाला ले, जैसे एक इंद्रिय जाति का 23 का भी बंद होता है, 25 का भी होता है और 26 का भी होता है, तो उसको 26 के साथ लेना। इस तरह से अलग अलग प्रकृतियों को हम सोच सकते हैं। अभी हम अपना धवला में से पढ़ेंगे, देखो। फिर कोई आता है अलग से तो हम उसको पढ़ेंगे वहां से। पेज नंबर 37 नीचे का पैराग्राफ, जघन्य प्रकृति प्रक्रम प्रकृत है, यानी ये सभी प्रकृतियों के आपस में कंपैरिजन करेंगे, किसका जघन्य किससे कम है, मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएंगे। अब कहते हैं प्रक्रम द्रव्य अप्रत्याख्यान मान में सबसे स्तोक है। हमने वहां उत्कृष्ट में भी अप्रत्याख्यान मान को ही लिया था, है ना। क्रोध में विशेष अधिक है, माया में विशेष अधिक है, लोभ में विशेष अधिक है। हमने देखा था इसका स्वामी कौन है, वो सूक्ष्म निगुत पहला समय। सूक्ष्म निगुत अपर्याप्त के हैं, वो उपपादी योग में है। हाँ, सूक्ष्म निगुत लब्धि अपर्याप्त, उपपादी योग में वो जघन्य योग सहित है। अब ये पहले अप्रत्याख्यान चार हो गए, फिर प्रत्याख्यान मान में विशेष अधिक है, क्रोध में विशेष अधिक है, माया में विशेष अधिक है और लोभ में विशेष अधिक है। चार उसके, चार इसके, आठ हो गए। हाँ, सब वहां जो जो बनती है उसके वहीं पर उसका स्वामी है। अब अनंतानुबंधी मान में विशेष अधिक है, क्रोध में विशेष अधिक है, माया में विशेष अधिक है, लोभ में विशेष अधिक है। देखो उत्कृष्ट में भी ऐसा ही अल्पभूतव देखा था हमने। 13 नंबर पर मिथ्यात्व में विशेष अधिक है। अब केवल दर्शनावरण में विशेष अधिक है। ये सब कैसे प्रकृतियां भी हम देख रहे हो, सर्वघाती है। प्रचला में विशेष अधिक है, निद्रा में विशेष अधिक है, प्रचला प्रचला में विशेष अधिक है और निद्रा निद्रा में विशेष अधिक है। और एक रही है ना स्थान वृद्धि, स्थान वृद्धि में विशेष अधिक है। यहां तक समझ में आई बात, उत्कृष्ट में ऐसा ही देखा था हमने। फिर केवल ज्ञानावरण में विशेष अधिक है। उसके बाद 21 नंबर पर औदारिक शरीर नाम कर्म में, शरीर में नहीं नाम कर्म की बात है, अनंत गुणा है। वहां हमने आहार शरीर नाम कर्म लिया था केवल ज्ञानावरण की बात। जरा कंपैरिजन मैं कर रही हूँ 36 पेज पर इसके साथ, वहां भी हमने नंबरिंग किया था तो 20 नंबर तक तो वही क्रम था, क्योंकि ये सारे सूक्ष्म निगोद को भी बनते हैं और वो उपपाद योग में बनने वाली प्रकृतियां हैं। वहां आहारक को लिया था, फिर वैकृत को लिया था, फिर औदारिक को लिया था, और यहाँ सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त को तो आहारक शरीर अंगोपांग बनेगा, तो औदारिक शरीर में अनंत गुणा है 21 नंबर पर। तेजस शरीर में विशेष अधिक है, कारमान शरीर में विशेष अधिक है। वहां तीस का बंद करने वाला, पर तो सूक्ष्म निगोद लेना उपपाद योग में, यानी नाम कर्म की 30 प्रकृतियां बांध रहा है। अब 24 हाँ सब, अभी ये जो औदारिक शरीर, तेजस कारमान, तिरंश गति, ये सब के लिए उसको ले सकते हैं 30 का बंद, यानी वो उद्योत सहित 30 वाला बंद है ना। अब ऐसा भी सोचना, उपपाद योग में कोई देवगति और नरकगति भी नहीं बांधेगा यहाँ सूक्ष्म निगोद में, तो अभी यहाँ नंबर किसका आएगा, कौन सी गति बन सकती है यहाँ पर, मनुष्य गति तिरंज गति दोनों बन सकती है। तो यहाँ अभी नंबर आया है तिरंज गति का, क्योंकि मनुष्य गति निगोद बांधेगा तो कितनी बांधेगा, 29 का बंद करेगा और यहाँ तिर्यंचगति का 30 के साथ बंद होगा, इसलिए पहले नंबर 30 का लिया। ख्याल में आती है बात? हाँ। तो 24 नंबर पर तिर्यंचगति ने नाम कर्म की बात है, उसमें संख्यात गुणा है। देखो संख्यात गुणा क्यों कहा, क्योंकि जो शरीर वाला अभी 30 में बंटवारा है ना, 30 में बटने वाली, क्योंकि 30 प्रकृतियों का बंध है, तो शरीरों के लिए एक ग्रुप और अंगोपांग के लिए एक ग्रुप होगा। अंगोपांग बन सकते हैं ना वहां पर, इसलिए उसी को लिया हमने। तो 28 उसमें भेद हो गए, यानी 28वें का तीसरा भाग एक एक शरीर में जाएगा। और गति में कितना जाएगा? 28वां भाग, इसलिए वो संख्यात गुणा का, यानी 30 प्रकृति का बंध है, इसलिए 1/28 × 1/3 हो जाएगा वो शरीर वगैरह का। और तीरंच गति में 1/28 भाग जाएगा ना, क्योंकि 30 प्रकृतियां है परंतु शरीर और अंगोपांग वाला वो पिंड में जाएगा, इसलिए उसके 28 बंटवारे हो गए। और हम देखते हैं हमेशा उल्टे क्रम से उसमें चला जाता है, गति में लास्ट में आएगा। अब 25 नंबर, यश कीर्ति व अयश कीर्ति में समान होकर विशेष अधिक है। देखो हमने यश कीर्ति का उत्कृष्ट बंध 10वें गुणस्थान में, वो अकेला बनता था नाम कर्म में से, पूरा नाम कर्म का मटेरियल उसको जाता था। अब यहाँ सूक्ष्म निबोध लब्धि पर्याप्त, पहले समय में ये दोनों ही बांध सकता है, यश कीर्ति अयश, जो बन रही है उसमें वही लेना ना। 30 प्रकृति का बंध जब कर रहा है तो यश कीर्ति के खाते में या अयश की खाते में उतना ही चला जाएगा। तो गति से यश में विशेष अधिक बताया मनीषा बेन, उसका कारण क्या है? देखो वो नाम कर्म में कैसा बंटवारा होता है उल्टा क्रम से, हम नाम कर्म कैसे गिनते हैं, गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान स्वनिर्णय वगैरह, लास्ट में जाकर वो स्थिरादि 6 आते हैं, तो यश कीर्ति बहुत अंत में आता है, उसके बाद केवल निर्माण रहता है, तीर्थंकर और निर्माण। तो पहला बहुभाग वहां यश कीर्ति को जाएगा और लास्ट में गति को जाएगा, इसलिए गति से उसमें ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, परंतु वही 30 का बंद करने वाला ही है वो, परंतु उसमें बहुभाग बहुभाग की अपेक्षा से उसमें अधिक होगा। अभी 26 नंबर पर मनुष्य गति में विशेष अधिक है, क्योंकि वहां जो है 30 का बंद हो रहा था, यह मनुष्य गति का है 29 का बंद है। यानी 1/29 हो जाएगा। जुगुप्सा में संख्यात गुणा है, वन अपॉन 27 हो जाएगा ना, 29 प्रकृति का बंद है। जब 30 प्रकृति का बंध था तो 28 उसके विभाग होते थे, अभी मनुष्य गति का 29 का बंध है तो उसमें 27 में बंटवारा होगा। शरीर में एक ग्रुप जाएगा और अंगोपांग में एक चला जाएगा, इसलिए उसके बंटवारे कितने हो गए? नहीं, अंगोपांग में तो एक ही अंगोपांग है ना उसका,
अंगोपांग में एक है,
शरीर 3 है, इसमें 2 कम, बराबर है। अब मनुष्य गति के बाद जुगुप्सा में संख्यात गुणा है, देखो ये नहीं, ये 1/27 था। अब जुगुप्सा में कितना जाएगा? हाँ, मोनी का वो पहले सर्वघाती तो देख लिए थे, अब ये देशघाती इसमें जाएगा, तो वो अनंतवा भाग तो नहीं के बराबर गिनो, तो बाकी जो बहुभाग है उसका करीबन आधा में से पांचवा भाग जाएगा, भले जुगुप्सा में लास्ट में जाता है, पहले वेद में जाएगा, फिर हास्य या शोक में जाएगा, फिर अति अरित, फिर भी उससे इसमें ज्यादा है, यानी आधे का पांचवा भाग है, मोहिनी के आधे का पांचवा भाग, यानी वो वन एक बटे 27 था, तो इसमें आधे का पांचवा। अब सभी में आधे का पांचवा भाग है, परंतु जुगुप्सा से उल्टे क्रम से आते हैं, तो भय में विशेष अधिक है, हास्य व शोक में विशेष अधिक है, रति व अरति में विशेष अधिक है, यानी जो बंध रही है उसकी बात लेना, हास्य रति बंधेगी या शोक रति बंधेगी, अन्यतर वेद में विशेष अधिक है, यानी पांच नौकशा में उल्टे क्रम से हमें विशेष अधिक देख लिया। अब उसके आगे संज्वलन मान में विशेष अधिक है, अभी हमको जघन्य लेना है, हा? हमेशा हम कैसे देखते हैं मान क्रोध माया लोभ, अब ये ऊपर के गुणस्थानों में जहां वो बंध मिटता है उसकी बात नहीं सोचना, वो तो उत्कृष्ट में सोची थी, ये सारी जो पर्याय अब प्रकृति है वो सूक्ष्म निगोद भी बांध रहा है, इसलिए उसके संज्वलन मान में कम द्रव्य है, क्योंकि हमने क्या देखा था, आधा पांच में डिवाइड हुआ था और आधा चार संज्वलन में जाएगा, मोहिनी के आधे का चौथा भाग, फिर से बंध रहे ना वो अनंतवा भाग गया उसमें मिथ्यात्व और सोलह कषाय में, मिथ्यात्व सोलह कषाय में तो अनंतवा भाग गया गया, वहां तो संज्वलन में मिला ही था थोड़ा सा, अभी ये देशघाती में से तो आधा, यानी बड़ा आधा जाएगा कषाय में, छोटा आधा जाएगा नौ कषाय में, छोटे आधे का पांचवा भाग हमने जुगुप्सा फिर भय फिर उल्टे क्रम से देखा था, अब जो बड़ा आधा है आधे से थोड़ा ज्यादा वाला वो चार में डिवाइड होगा, हाँ तो उसमें बहुभाग लोभ में जाएगा, फिर माया में, फिर क्रोध में, फिर मान में, यानी आधे का वन फोर्थ, तो वहां वन वन टेंथ था, अभी यह वन एट्थ हो जाएगा। समझ में आ रही रीजनिंग, वो वन टेंथ और ये वन एट, थोड़ा विशेष अधिक है, क्रोध में विशेष अधिक है, माया में विशेष अधिक है और लोभ में विशेष अधिक, और वो उपपाद योग में पहले समय में ही सब घटित हो जाता है। दानांतराय में विशेष अधिक है क्योंकि वो वन एट था, यानी पूरा वन एट था मोहिनी का, अब दानांतराय में विशेष अधिक है, अब ये अंतराय का वन फिफ्थ होगा, अंतराय में कर्म का बंटवारा कैसे होता है मालूम है, पहला हाँ पहला भूभाग वीर्यांतराय में जाएगा उल्टा क्रम से और अंत में दान, इसलिए इसमें कम, तो वन फिफ्थ है परंतु वो भी छोटा वन फिफ्थ है, फिर उसे थोड़ा अधिक करेंगे हर एक में, तो लाभांतराय में विशेष अधिक है, भोगांतराय में विशेष अधिक है, परिभोगांतराय में विशेष अधिक है और वीरांतराय में विशेष अधिक है। यहां तक समझ में आई बात, मनीषा बेन नहीं समझा तो पूछना, हमें मिनिमम योग से प्रदेश बंद मिनिमम कहाँ होता है उसकी बात हम देख रहे हैं, ये सारे निगोद में पॉसिबल यहाँ पर्याय ले रहे हैं, यानी वो प्रकृतियां ले रहे हैं, पर्याय नहीं प्रकृतियां, इसलिए गति में भी हमने तिर्यंज गति मनुष्य गति ली है, अभी देव गति नर गति को यहां नहीं लिया है। अब देखो ये अभी हमारे हो गए वीर्यांतराय तक 40 हो गए, फिर भी वो वन फिफ्थ था अंतराय का वन फिफ्थ, अब कहते हैं मन पर ये ज्ञानावरण में विशेष अधिक है, अभी जो देशघाती का बंटवारा चल रहा है वो चार में होता है, पहला बहुभाग जाएगा मति ज्ञानावरण को और अंत में जाएगा मनपरे ज्ञानावरण को, इसलिए वो वन फोर्थ है ज्ञानावरण का वन फोर्थ। परंतु वो भी विशेष अधिक के उल्टे क्रम से हम देखेंगे, अवधि ज्ञानावरण में विशेष अधिक है, श्रुत ज्ञानावरण में विशेष अधिक है और मति ज्ञानावरण में विशेष अधिक है, यानी वो वन फोर्थ हुआ ना, ज्ञानावरण का वन फोर्थ हुआ। अब दर्शनावरण में से अवधि दर्शनावरण में विशेष अधिक है, वो ज्ञानावरण में से लक्ष्मी बहन यहाँ इसको विशेष अधिक क्यों कहा? कितना जाएगा इसमें बोलो? आप बोलो। वन थर्ड देशघाती तीन ही है, बाकी सारे सर्वघाती है, पांच निद्रा और केवल केवल दर्शनावरण वो सर्वघाती है, वो अनंतवा भाग उसमें गया। हाँ, ये तीन, ये देशघाती में वो अनंतवे भाग में से मिलेगा, अपन उसको हम गौण करेंगे। तो ये देशघाती का वन थर्ड है ना, दर्शनावरण का करीबन वन थर्ड इसमें आ जाएगा। वो ज्ञानावरण का वन फोर्थ था, ये दर्शनावरण का वन थर्ड, और ज्ञानावरण दर्शनावरण में करीब उतना ही द्रव्य जाता है। उल्टे क्रम से लेना दर्शन, अवधि दर्शनावरण, फिर अचक्षु, फिर चक्षु। अचक्षु दर्शनावरण में विशेष अधिक है, चक्षु दर्शनावरण में विशेष अधिक है, ये 47 हो गए। अब 48 में ऊंच व नीच गोत्र में संख्यात गुणा है। क्यों संख्यात गुणा है? पूरे समय प्रबद्ध का वन सेवंथ है, पूरे समय प्रबद्ध का, यह हम कहेंगे गोत्र का पूरा भाग। अब कहते हैं सांता वासाता वेदनी में विशेष अधिक है, क्योंकि ये वेदनी का पूरा भाग। तो हमने देखा पहला बहुभाग वेदनी और फिर बाद में जाते जाते नाम गोत्र में रहता है। वेदनी में ऐसे भी ज्यादा जाते हैं, तो वेदनी का पूरा इसी में जाएगा। हाँ, अभी देखते हैं। वेदनी में वेदनी का पूरा आया ना, यहां तक तो समझ में आई बात। अब कहते वैक्रियक शरीर में, यानी वो नाम कर्म में असंख्यात गुणा है। हाँ देखो, यहां तो वैक्रिक, हाँ यहां तो निगोत तो इसको बांध नहीं सकता। हाँ, तो बांधने वाला कौन होगा? तो समय दृष्टि संगी पंचेन्द्रिय उपपाद योग में वैक्रिक अंगोपांग को बांध सकता है। चौथे गुणस्थान वाला मनुष्य समय दृष्टि ले लो ना उपपाद योग में, और इसको जघन्य बांधना है ना उसको, तो जघन्य बांधना है तो देवगति के साथ तीर्थंकर बंधेगा, तब वैक्रिक उसके मिनिमम बंधेगी। फिर से देवगति का 28 का बंध करने से 29 का करेगा तो उसका और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा उसका। इसलिए यहां समय दृष्टि लेना, मनुष्य लेना, पहले समय में तीर्थंकर प्लस देवगति बांधने वाला जीव लेना, तो उसके वैक्रिक शरीर में इसलिए असंख्यात गुणा कहा, क्योंकि योग असंख्यात गुणा है। ख्याल में आती बात? सूक्ष्म निगोद के योग से ये चौथे गुणस्थान वाले का, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय है, उसका उपपाद योग असंख्यात गुणा होता है। क्योंकि हमको स्वामित्व पता चले तो ये समझ में आ सकती बात। देखो वैक्रिक शरीर का जघन्य किसके होगा? तो यहां तो उपपाद में देवगति बांधने वाले को होगा, उपपाद में कोई नरक गति नहीं बांधेगा। एक बात, अब देवगति का रेगुलर बंध तो 28 का होता है, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो 29 का हो सकता है। उपपाद में वो 30-31 का तो बंध नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये कौन सा लेना जीव? प्रथम समयवर्ती वो उपपाद वाला, चौथे गुणस्थान वाला, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला है, यानी देवगति प्लस तीर्थंकर बांधने वाला। हाँ, तो यहाँ जघन्य की बात है, हमें कम से कम लेना है। हाँ, जघन्य लेना है, तो देवगति प्लस तीर्थंकर ये 29 का बंध करने वाला चाहिए, 29 का बंध करने वाला। अब यह मनुष्य लेना का तीर्यंच लेना, मनुष्य ही लेना, क्योंकि भोगभूमि वाला कोई वहां तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधेगा। चौथे गुणस्थान वाला मनुष्य उपपाद योग में और उसका योग निगोद से असंख्यात गुणा है, इसलिए यहां असंख्यात गुणा कहा। अभी आगे देव गति में संख्यात गुणा है। देखो वैकिरिक शरीर जब बन रहा था तो वैकिरिक शरीर, फिर तेजस शरीर, कार्मन शरीर, यानी वहां 29 प्रकृतियां बन रही थी। हाँ, तो 29 में से जो हमने देखा था ना अंगोपांग तो एक ही बन रहा है, तो उसके पूरा जला इसमें तीन शरीर में एक पूरा पिंड जाएगा, यानी दो प्रकृति दो कम करना बंटवारे, यानी 27 में बंटवारा होगा और वो 27 का बंटवारा तीन में होगा। तो वैकिरिक शरीर में कितना चला जाएगा, 1/27 × 1/3 है ना, और देवगति में कितना जाएगा, अभी वही देवगति को भी वही 29 का बंद करने वाला है, यानी गति में तो 1/27 इतना जाएगा, पर वो अंत में जाएगा, पहला बहुभाग उल्टा क्रम से आते आते उसमें कम हो जाएगा, परंतु वो नहीं भी लेते वो 1/27 भाग चला जाएगा। इसलिए वो 1/3 से वो ज्यादा हो गया ना, इसलिए संख्यात गुणा। अभी आगे मनुष्य व तीर्यंच आयु लिया है, अब आयु कोई भी उपपाद योग में नहीं बांध सकता, परंतु मिनिमम योग में आयु बांधने वाला कौन है, मनुष्य आयु तीर्यंच आयु हमने देखा था, वो क्षुल्लक बहु वाला तृतीय त्रिभाग के पहले समय में आयु बांधने वाला, तो वो असंख्यात गुणा है। असंख्यात गुणा क्यों, ये जो हमने देवगति और वैकरिक शरीर बांधने वाला समय दृष्टि उपपाद योग लिया और इनके उपपाद से वो निगोद का परिणाम योग जो है वो असंख्यात गुणा है। देखो यहां इसका स्वामित्व जाने बिना ही हम केवल उसकी लिस्ट पढ़ने से कुछ नहीं पता चलता था। तो मनुष्यायु तीर्यंचायु बांधने वाला स्वामी कौन है, हाँ क्षुल्लक भव वाला, क्षुल्लक भव का बंथन भव का तृतीय त्रिभाग का पहला समय, उस समय वो आयु बांध रहे हैं ऐसा लेना उसको। इसका अर्थ क्या है, उसका जो योग है, क्योंकि उसके पहले उपपाद होता है फिर एकांत वृद्धि और तृतीय त्रिभाग शुरू हुआ तो उसका परिणाम योग चालू हो गया जिसको हम घोलमान योग कहते हैं। तो चौथे गुणस्थान वाला तो संगी पंचेंद्रिय है, उसके उपपाद योग से उसका घोलमान असंख्यात गुणा है। इवन उसका एकांत वृद्धि का पहला समय भी असंख्यात गुणा होता है। आगे नरक गति का असंख्यात गुणा है। अब नरक गति तो पर्याप्त जीव भी नहीं, वो तो हमने कहा मनुष्यायु तीर्यंचायु बांधने वाला कौन लिया, सूक्ष्म निगोदी क्षुल्लक भव वाला तृतीय त्रिभा, हाँ, और ये बांधने वाला जघन्य बांधने वाला कौन है, असंगी पंचेंद्रिय नरक गति, पर वो पर्याप्त होने पर बांधेगा, अपर्याप्त अवस्था में कोई नरक गति नहीं बांध सकता। आठ का बंद करने वाला असंगी चिन्ह, असंगी पंचेंद्रिय उसका घोलमान योग होगा वहां पर। अब 54 नंबर पर देव व नारक आयु का असंख्यात गुणा है। वो आठ का
1/28 हो जाएगा
नरक गति का, हाँ क्योंकि नाम कर्म का उसमें हाँ यानी नाम कर्म का बराबर है, नाम कर्म का 1/27 में चला जाएगा और देव और नारक का असंख्यात गुणा। आयु देखो, नरक गति से देवायु नारकायु की बात, वो आयु है, वो असंख्य पंचेंद्रिय लिया था। देव और नारकायु बांधने वाला भी असंख्य पंचेंद्रिय है, परंतु उसका वो घोलमान योग होगा वहां पर। इसका भी घोलमान था, परंतु वो तो शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही बांध सकता है जघन्य। आयु में तो उसका पूरा चला जाएगा, वो नाम कर्म का 1/27 गया, पर असंख्यात गुणा कहा है, संख्यात गुणा नहीं कहा। देव निरयाव अणम, देखो देखो, अभी हमने देखो देवायु नरकायु का जो गिलिया ना, एक मिनट, नरगति नरकायु का जो है 28 प्रकृतियों के साथ 8 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला असंग पंचेंद्रिय घोलमान जीव। अब आयु की बात है ना, देवायु नरकायु को हमें पढ़ना था क्या? नहीं, हाँ, नरकायु उसका भी स्वामी वही जीव था, स्वामी तो वही जीव था, तो संख्यात गुणा होना चाहिए था ना। एक मिनट, इसमें कोई अल्पभूतव है तो देख लेते, जघन्य का अल्पभूतव होना, जरा इंडेक्स देख लो, स्वामित्व परिमाण अल्पभूतव उसमें 7वें नंबर में जाएगा। जघन्य का परिमाण है 362 की। हाँ, वो तो मूल प्रकृतियों में होगा। जरा उसमें 7वीं पुस्तक निकालना बेटा, ये महाबंध की 7वीं पुस्तक 7 नंबर है, देखो उसमें वो एक के बाजू में इधर देखो, 7वीं में कंटिन्यूएशन में देखो, वहां है ना मेरे 7वीं दिख रही है मेरे को, वो इनकी हो गई, और यहां से सेंटर से तीसरी। वो मेरे को देना। हाँ, छठी में वो उत्तर प्रकृति की शुरुआत हुई थी, कंटिन्यूएशन में यहाँ पर है। इसका विषय अनुक्रम, स्पर्शन काल भाव अल्पभूतव, स्वस्थान उत्कृष्ट जघन्य, स्वस्थान अल्पभूतव, हमें परस्थान अल्पभूतव चाहिए ना, स्वस्थान में भी चलेगा ना, आयु से आयु नहीं, परस्थान चाहिए। 81 उत्कृष्ट का है, वहां जघन्य का, जघन्य का कितना है उत्कृष्ट परस्थान, जघन्य परस्थान 94। जघन्य का प्रकरण है, देखो हम जो हम देख रहे हैं ना वही वहां पर है, प्रदेश औदारिक भूगांतराय वगैरह वगैरह, परिभोगन मन परिज्ञान अवधि ज्ञान दर्शन वरुण चक्षु दर्शन विशेष अधिक अन्य वैक्रिक शरीर, असंख्यात गुणा है। देवगति का संख्यात गुणा, तीरंचायु मनुष्यायु का असंख्यात गुणा, नरक गति का असंख्यात गुणा, और देवायु का जो संख्यात गुणा संख्यात जो गुणा किया हमने उसमें करेक्शन किया था याद होगा तो। देखो 95 पेज पर प्राकृत में ऊपर के पैराग्राफ नीचे की लाइन निरय देवायु ज प संख्यात जो गुणा असंख्यात गुणा हो ही नहीं सकता उसका क्योंकि हमने करेक्शन किया है उसका। जरा उसका करेक्शन कर दो वो निकाला है पेज नंबर 95 महाबंध यहाँ पर भी हमको संख्यात गुणा ही करना चाहिए। ये मुझे फिट नहीं बैठा इसीलिए होते देखा ना संख्यात गुणा असंख्यज गुणा नहीं संख्यज गुणा। एक मिनट दे सेकंड लाइन देव निरया वाणम संख्यज गुणम चाहिए और उसके लिए रेफरेंस सेकंड लाइन प्राकृत की सेकंड लाइन पहले लाइन में दे मनुष्य दीर्घायु और उसमें रेफरेंस लिखो महाबंध पुस्तक सातवी वही अल्पबोध है पेज 95 था ना अभी हाँ पृष्ठ 95 देव प्राकृत प्राकृत कितवी लिटी है लाइन कौन सी थी 95 की प्राकृत एक दोन तीन चार पांच छठी लाइन उसमें हिंदी में भी मिस्टेक थी महाबंध में हिंदी में मिस्टेक थी प्राकृत लाइन 6 है ना चलो निकाला ये हिंदी में पहली लाइन देव नारक आयु का असंख्यात गुणा का संख्यात गुणा करना क्योंकि स्वामी वही है जो नरक गति बांधने वाला और नरकायु बांधने वाला असंगी पंचेंद्रिय लास्ट टाइम हमने इतना विस्तार से नहीं देखा था क्योंकि ये स्वामित्व वगैरह हमारा महाबंध में हुआ था अभी इसकी ज्यादा ख्याल सूक्ष्मता ख्याल में आ रही है। परंतु वो 8 का बंद करने वाला था तो नाम कर्म के नाम कर्म का बंद करने वाला था
तो 1/27 और ये
1/27 हो जाता है। नाम कर्म का 1/27 यहाँ आयु का पूरा वो भी 8 कर्म बांध रहा है ये भी 8 कर्म बांध रहा है और वही योग लेना है जगन्य योग इसलिए बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किसमें वो नाम कर्म का 1/27 और आयु का पूरा भाग भले आयु में कम मिलता है नाम कर्म से फिर भी थोड़ा कम मिलता है परंतु यहाँ तो बहुत डिफरेंस पड़ता है। चलो एक तो मिल गया उसका अपने को 55 आहार शरीर का प्रक्रम द्रव्य असंख्यात गुणा है अब देखो वो असंगी पंचेंद्रिय बांध रहा था ये संगी पंचेंद्रिय हाँ और वो तो परिणाम योग है उसका हाँ 31 का बंद संगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय 8 का बंद है ना 8 का बंद तो नाम कर्म का वो
31 का बंद 1/31 = 1/4
एक मिनट, इकतीस का बंद है। हाँ नाम कर्म इकतीस का बंद है। कितना कितना कितने में? हाँ, क्योंकि वो चार शरीर और दो अंगोपांग हो गए, परंतु जितना 29 का होगा उतना ही 31 का होगा, तो 1/27, 1/27 का 1/4। चार शरीर बन रहे ना, आहारक वैक्रियक तेजस कर्म 1/4। हाँ वो संघी पंचेंद्रिय होने से योग असंख्यात गुणा है, बस इतना है लेना। हाँ। और पहले हमने जो देखे थे दोनों के योग सेम थे, नरक गति का जघन्य करने वाला और नरकायु देवायु का जघन्य करने वाला, वही असंघी पंचेंद्रिय था, परिणाम योग में था, वो बाकी सब कंडीशन वही थी, तो उसमें तो प्रकृति भेद से वो बात आई थी, वो नाम कर्म का एक भाग मिला उसको नरक गति में, और ये पूरा आयु का भाग मिला। यहां तक समझ में आई? पहले हमने उत्कृष्ट के साथ उत्कृष्ट की कंपैरिजन की, अभी जघन्य के साथ जघन्य। जघन्य में बहुत सारी प्रकृतियां तो सूक्ष्म निगोद लब्धिया पर्याप्त के पहले समय में बनती, वो तो केवल वो नरक गति वहां नहीं बंधेगी, देवगति समय दृष्टि को बंधेगी, आयु तो बाद में बंधेगी, इस तरह से तिर्यंचायु नरकायु तो सॉरी तिर्यंचायु और मनुष्यायु तो निगोद को भी बनती है, परंतु देवायु और ये तो असंगी पंचेंद्रिय के, इस तरह से कुछ डिफरेंसेस हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा जो हमारा जो विषय क्या हुआ था, प्रकृति प्रक्रम, यानी प्रकृति भेद से उसमें परमाणु कितने जाते हैं, जो विभाजन होता है उसकी अपेक्षा रखता है, और उसमें नंबर ऑफ परमाणु में तो योग तो काम करता ही करता है। अब आगे 39 पेज पर अभी जो नया पैराग्राफ है, स्थिति प्रक्रम प्रकृत है। स्थिति प्रक्रम में क्या लेना है, स्थिति में वो निषेक रचना जो होती है, स्थिति की निषेक रचना होती है, तो उसमें कौन सी स्थिति में ज्यादा प्रदेशाग्र मिलेगा, क्योंकि प्रथम स्थिति में ज्यादा होते हैं, फिर थोड़ा कम अंत में सबसे कम हो जाता है, लास्ट में सबसे कम, तो यही कहेंगे हम। चरम स्थिति में प्रक्रमित प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, चरम स्थिति यानी अंतिम निषेक, और ये सभी बातें बंध के समय की बात हो रही है। बनते समय जो एक समय प्रबद्ध है उसकी जो रचना होती है निषेकों की, उसमें अंतिम निषेक में मिनिमम प्रदेशाग्र है। प्रथम स्थिति में प्रक्रमित प्रदेशाग्र असंख्यात गुणा है, क्योंकि हमने देखा था कि जितनी स्थिति बनती है तो उसमें उल्टे क्रम से चले आओ तो थोड़ा अधिकार, फिर दुगुना हो जाएगा, फिर दुगुना हो जाएगा, फिर कितनी असंख्यात गुणहानियां होगी, एक एक गुणहानि का प्रमाण पल्ले के असंख्यात विभाग है, कर्मों की बात है ना ये, तो इस तरह से वो असंख्यात गुणा हो जाता है। अंतिम निषेक में जितने परमाणु है उससे पहले निषेक में असंख्यात गुणा हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, अप्रथम अचरम स्थितियों में, यानी अंतिम निषेक भी छोड़ो पहला भी छोड़ो, बीच वाले सबका मिलकर वो उससे भी असंख्यात गुना है। जैसे हमने हमेशा वो 512 वाला पहला लेते हैं और अंतिम वाला वो 9 वाला है, तो 9 से 512 वो असंख्यात गुना, और 9 भी निकालो 512 भी निकालो, किसमें से 63 से में से, यानी 6300 में से 521 निकालो तो बाकी सब मिलकर 512 से असंख्यात गुना, ये उसका अर्थ होता है अचरम और अप्रथम। फिर अप्रथम स्थिति में प्रक्रमित प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, अब प्रथम छोड़कर बाकी, यानी उसमें वो 9 मिला दो तो विशेष अधिक होगा। और अचरम स्थिति में, यानी 9 को छोड़ो और 512 को मिलाओ, प्रक्रमित प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, और सब स्थितियों में प्रक्रमित प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, वो 9 512 और बीच वाले ये सब उदाहरण लेके हम समझा सकते हैं। प्रश्न, यह अल्प बहुत्व क्यों है? समाधान, कारण कि वह स्थितियों में प्रक्रम को प्राप्त हुए द्रव्य की अपेक्षा करता है, यथा क्योंकि वो निषेक रचना होती है, उसमें प्रदेशों का बंटवारा कैसे होता है उसकी अपेक्षा यहाँ लगती है। जघन्य स्थिति में बहुत प्रदेशाग्र प्रक्रांत होता है, यानी जहां स्थिति जघन्य स्थिति यानी पहला निषेक, ये स्थिति बंध यानी टोटल स्थिति बंध की बात नहीं है, जघन्य स्थिति यानी निषेक पहला। द्वितीय स्थिति में विशेषहीन प्रदेशाग्र प्रक्रांत होता है, हमने देखा था चय घटते हुए इस प्रकार विशेषहीन होकर पल्लोपम के असंख्यात वे भाग तक जाता है, वहां की स्थिति में यानी वहां के निषेक में दुगुणाहीन प्रदेशाग्र प्रक्रांत होता है, यानी वो संख्या आधी हो जाती है जिसको हम गुणहानि कहते हैं। और कर्मों में ये गुणहानि के लिए पल्ल के असंख्यात वे भाग प्रमाण निषेक जाकर संख्या आधी होती है, 512 की 256 हो जाएगी। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिए, यानी प्रत्येक एक एक गुणहानि जाए तो आधा होगा, फिर आधे का आधा होगा, आधे का आधा, यानी हमने जो उदाहरण दिया था 512 था, फिर 8 निषेक जाने पर 256, फिर 128, फिर 64, फिर 32, 16, अंतिम निषेक हमने 9 का देखा। यहाँ एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर, हमारी भाषा में एक गुणहानि उसका आयाम पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। और ऐसी गुणहानियां टोटल कितनी होती है जिसको हम नाना गुणहानियां कहते हैं, तो नाना प्रदेश गुणहानि स्थानांतर पल्लोपम के वर्गमूल के असंख्यात वे भाग मात्र है, असंख्यात वर्गमूल नहीं, वर्गमूल का असंख्यात भाग, यानी पल्ल के वर्गमूल का असंख्यात भाग। तो कहते नाना प्रदेश गुणहानि स्थानांतर स्तोक है, और एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर उनसे असंख्यात गुणा है, क्योंकि एक एक गुणहानि के लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगता है जो पल्ले के असंख्यात वर्गमूल हो जाएंगे। हमने हमेशा देखा था उसको असंख्यात से भाग देते, जैसे हमने पनट्टी को कोई 4 से भाग देंगे तो 256 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग आएगा। और ऐसे नाना गुणहानियां कितनी, वर्गमूल का असंख्यात। इस प्रकार स्थिति प्रक्रम समाप्त हो, इतना ही है स्थिति प्रक्रम, हमें वो प्रकृति में ही जरा थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। ये तो हमने बहुत बार निषेक रचना देखी है, अब अनुभाग की बात करेंगे। अनुभाग प्रक्रम प्रकृत है, देखो अनुभाग की रचना कैसे बन, जब बंद होने के समय स्थिति की अपेक्षा हम निषेक रचना को बताते, नीचे का निषेक अधिक प्रदेश वाला फिर ऊपर घटते, अनुभाग में क्या देखते हैं, यहाँ अनुभाग की अपेक्षा जिसमें जिसमें समान अनुभाग है और वो मिनिमम अनुभाग वाले पहली वर्गणा होगी, उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक दूसरी वर्गणा, एक एक से बढ़ते जहां तक है वो सारे अनंत वर्गणाओं को मिलकर एक स्पर्धक कहेंगे। वो प्रति वर्गणा प्रदेश थोड़े हीन थोड़े हीन थोड़े हीन हो जाते, फिर दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में, उसमें अनुभाग का तो बहुत बड़ा अंतर पड़ता है पर प्रदेशों की अपेक्षा वही चय की बात चलती है। ऐसे अनंत स्पर्धकों में एक गुणहानि होती है और ऐसे गुणहानियां भी बहुत सारी होती है, यानी वहां सब अनंतों में बात चलती है। अब यहां बताएंगे अनुभाग प्रक्रम प्रकृत है, जघन्य वर्गणा में बहुत प्रदेशाग्र प्रक्रांत होता है। अभी हम बीच बीच में अनुभाग की अपेक्षा गैप है इसलिए हम उसको स्पर्धक कहते हैं, पर वो अनुभाग की गैप कंसिडर मत करो, केवल वर्गणाओं में प्रदेशों की संख्या देखो, तो नीचे की वर्गणा से ऊपर की अंतिम वर्गणा तक प्रदेश जो है जैसे निषेक में होता था वो प्रति वर्गणा विशेषहीन विशेषहीन चला जाएगा, उसमें भी गुणहानियां होगी, उसमें भी नाना गुणहानियां होगी। तो जघन्य वर्गणा यानी पहली वर्गणा, पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा, उसमें प्रदेशाग्र बहुत है। द्वितीय वर्गणा में अनंत वे भाग रूप विशेषहीन प्रदेशाग्र प्रक्रांत होता है, वो चय का प्रमाण जो है वो अनंत वा भाग प्रमाण है। इस प्रकार अनंत स्पर्धक जाकर दुगुणाहीन प्रदेशाग्र प्रक्रांत होता है। देखो यानी वो संख्या कितनी होगी परमाणु की हम इमेजिन कर सकते हैं, अनंत एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा, और ऐसे अनंत स्पर्धक जाने पर वो पहली वर्गणा में जितने परमाणु थे वो आधे हो जाते हैं, और एक समय में ऐसी अनंत अनंत गुणहानियां भी होती है ना। इस प्रकार उत्कृष्ट वर्गना तक ले जाना चाहिए। अब एक गुणहानि स्थानांतर में स्पर्धक स्तोक है, यानी कितने स्पर्धक जाने पर एक गुणहानि होती है, तो उसकी संख्या कम है। नाना गुणहानि स्थानांतर में स्पर्धक अनंत गुणे हैं। में स्पर्धक लिखा है, में स्पर्धक नहीं चाहिए, क्योंकि नाना गुणहानि स्थान यानी एक गुणहानि में अनंत स्पर्धक है, और ऐसी गुणहानियां कितनी है तो अनंत है। गुणहानियां अनंत है, गुणहानियों में स्पर्धक तो अनंत होगी होगी, उसकी बात नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी उसमें प्रश्न चिन्ह लगाया था में स्पर्धक के ऊपर कि नाना गुणहानि स्थानांतर अनंत गुण है, बस इतना है। ऊपर देखो ना, एक गुणहानि ठानांतरे फद्दयानी थोबानी, और नाना गुणहानि ठानांतराणी अनंत गुणानी, वो मूल में बराबर है। उसका ट्रांसलेशन में उन्होंने जो स्पर्धक शब्द डाला है वो घटित नहीं होता है। यहां अल्प बहुत्व का कथन करते हुए इस प्रकार है, उत्कृष्ट वर्गना में प्रक्रम प्राप्त द्रव्य सबसे स्तोक है। जैसे हमने 512 वो निषेक में देखा था, पर निषेक में असंख्य गुणा की बात है, और यह अनंत गुणा का डिफरेंस हो जाता है। जघन्य वर्गना में अनंत गुणा है ना, यहां अजघन्य अनुत्कृष्ट वर्गनाओं में प्रक्रम प्राप्त द्रव्य अनंत गुणा है। अनुभाग में सर्वत्र वो अनंत गुणा की बात बताए। अजघन्य वर्गनाओं में विशेष अधिक है, और अनुत्कृष्ट वर्गनाओं में विशेष अधिक है। अजघन्य कहने से अप्रथम, अजघन्य का अर्थ है अप्रथम, और अनुत्कृष्ट है ने अचरम, अचरम। अजघन्य का ही अर्थ अप्रथम होता है, क्योंकि जघन्य ने प्रथम, उत्कृष्ट वो चरम होती है, इसलिए अचरम, क्योंकि वहां स्थिति में वो शब्द आए थे। ये हो गए 6 अल्पभूत, इसमें भी वही अल्पभूत हुआ, वहां असंख्यात गुणा था, यहां अनंत गुणा है। अब स्थितियों में प्रक्रम प्राप्त अनुभाग के अल्पभूत का कथन करते हैं।
अनुभाग का कथन किया ऊपर,
हाँ बोलो।
सो ये अभी जो दूसरा ये जो अनुभाग स्थितियों में प्रक्रम प्राप्त अनुभाग के अल्पभूत्व कथन करते हैं, वो तो हमने ऊपर देखा प्रतिस्थिति में क्या क्या अनुभाग होता है अल्पभूत्व। अभी अल्पभूत्व बताने जा रहे हैं,
ऊपर देखते हम संपही ठिदिसु पक्कमिद अनुभागस्य अप्पा बहुवम उच्चदे। अब स्थितियों में प्रक्रम प्राप्त अनुभाग के अल्पभूत्व का कथन करते हैं। प्रक्रम प्राप्त अनुभाग का अर्थ क्या लेना है? ना ना, प्रक्रम प्राप्त ये तो बंध के समय है, प्रक्रम है ने बंध, स्थितियों में प्रक्रम प्राप्त अनुभाग के अल्पभूत्व का कथन कहते हैं। जघन्य स्थिति में यानी पहला निषेक में प्रक्रम प्राप्त अनुभाग सबसे स्तोक है। ना ना ना, उसकी बात यहाँ नहीं लेना है। सभी निषेकों में सभी अनुभाग होते हैं, ये तो नक्की है ना, परंतु पहले पहले निषेक में वैसे भी परमाणु ज्यादा है, होगा ना, सभी होगा।
हमने इसे देखा था कि सभी स्थितियों में अनुभाग,
सभी स्थितियों में सभी प्रकार के अनुभाग होते हैं, ये बराबर है। अभी सभी स्थितियों में सभी अनुभाग होते हैं, और
या अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अनुभव
होता है? नहीं नहीं, टोटल अनुभव लेना है, एवरेज भी नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है अभी उसको कैसे हम बताएंगे आपको। पहले निषेक में परमाणु सब सर्वाधिक है, अब उसमें अनुभाग की रचना करो, उसमें भी जघन्य वर्गना से उत्कृष्ट वर्गना तक सब अनुभाग होगा, वहां पर भी टोटल अनुभाग लेना है।
यानी
ज्यादा ज्यादा भी नहीं, सबसे स्तोक बताया है, क्योंकि वहां छोटी नीचे की वर्गना में परमाणु भी उतने ही ज्यादा होगी ना।
कुछ घोटाला हो रहा है, परमाणु ज्यादा तो अनुभाग हम लोग टोटल अनुभाग गिने के तो ज्यादा हो जाएंगे।
ऐसा नहीं, अभी उसका यहाँ एग्जैक्टली उन्होंने जैसे ये सॉल्यूशन नहीं दिया है, और वो बीच वाले असंख्यात गुण है उसका भी बात नहीं है, विशेष अधिक में ले लिया उसका, क्योंकि टोटल अनुभाग कैलकुलेट जैसे हमने उन्होंने अभी हमने जो उत्कृष्ट और जघन्य बताया उसका तो कोई उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया था, डायरेक्ट बता दिया था, ये हमने महाबंध के आधार से उसको निकाला था। ख्याल में आई ना बात? अभी यहाँ पर भी स्थिति में अनुभाग की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक एक निषेक में जो अनुभाग है, प्रत्येक निषेक में सभी प्रकार का अनुभाग है, परंतु वहां परमाणु इतने ज्यादा होने से एक निषेक के परमाणुओं को अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, प्रत्येक स्थिति में अलग अलग, यानी ये बैठ नहीं रहा अभी। परंतु ऐसा नहीं समझना कि नीचे के उसमें अनुभाग कम है और ऊपर के, यानी वो स्थिति के सभी में वो सभी प्रकार के अनुभाग पाए जाते, बस ये तो नक्की है, और उसके लिए हमने लब्धिसार को भी निकाल के वहां लिख के बताया था, क्योंकि नीचे के निषेक में ज्यादा ऊपर ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, परंतु यहाँ जो प्रक्रम प्राप्त अनुभाग ये शब्द डाला है उसमें कुछ अलग बात निकलती है।
तो ये हमारे समझ में नहीं आ
रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है, नहीं तो बीच में वो और जब असंख्यात गुणा बताते ना, परमाणु असंख्यात गुणा है और अनुभाग विशेष अधिक बताया, ख्याल में ना, कोई कुछ छूट रहा है अपना। ये पढ़ लेते अभी इसका अल्प बहुत्व का। जघन्य स्थिति में प्रक्रम प्राप्त अनुभाग सबसे स्तोक है, अप्रथम अचरम स्थितियों में प्रक्रम प्राप्त अनुभाग अनंत गुणा है, अचरम स्थितियों में अनुभाग विशेष अधिक है, और चरम स्थिति में अनुभाग अनंत गुणा है। अकेले चरम स्थिति में अनुभाग अनंत गुणा लिया, अप्रथम स्थितियों में अनुभाग विशेष अधिक है, और सब स्थितियों में अनुभाग विशेष अधिक है, यह निक्षेपाचार्य का उपदेश है। इस प्रकार प्रक्रम अनुयोग द्वार समाप्त हुआ, क्योंकि पहले उन्होंने स्थितियों में बताया था, प्रदेशाग्रह स्थिति में प्रदेशाग्रह लिखा, स्थिति प्रक्रम लिया, फिर अनुभाग में प्रक्रम लिया, और स्थितियों में प्रक्रम प्राप्त अनुभाग का बात बताई यहाँ पर। यानी कुछ तो यहाँ छूट रहा है, वो ख्याल में नहीं आया, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसकी स्थिति कम है, पहले निषेक में सभी कम अनुभाग वाले ज्यादा, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रक्रम प्राप्त अनुभाग जो बताया है उसमें, तो उसमें कुछ तो उनकी अपेक्षा ख्याल में नहीं आ रही अपने।
ये बंधक की अपेक्षा है प्रक्रम प्राप्त, तो प्रक्रम हम लोग बंधे होंगे, बंधक की
अपेक्षा। प्रक्रम प्राप्त अनुभाग की कुछ बात अलग होगी, तो प्रक्रम प्राप्त यानी वो तो संचित यानी परमाणु बंध में ही लेना, पहला ही समय लेना बंध का, प्रक्रम प्राप्त में उसके नंबर ऑफ परमाणु लेना, क्योंकि प्रक्रम प्राप्त और अनुभव ऐसा जो लिया है ना उसमें कुछ बात छूट रही है अपने। अभी हम आगे का बढ़ते हैं, 9 नंबर का अनुयोग द्वार। वो प्रक्रम था, ये उपक्रम है। देखो 9 नंबर में देखते हैं अभी, एक 41 पेज पर, वह कमाणु योग द्वारम अनि उपक्रम अनुयोग द्वार। अभी इसका मंगलाचरण पढ़ेंगे। सयलिंद विंद वंदिय महिनंदिय भव पौम वन संडम अहिनंदन जननाहम नमिऊण वक्कमम वोच्छम। अभिनंदन जिनेन्द्र को। सयलिंद विंद वंदिय समस्त इंद्र समूहों से वंदित और भव्य जीव रूपी कमल वनखंड को अभिनंदित करने वाले भव्य पौम वनसंडम, वनसंड ने वनखंड को, कमल वनखंड को, और कैसे हैं अहिनंदीय भव्य भव्य जीव रूपी कमल वनखंड को अभिनंदित करने वाले। देखो सयलिंद विंद वंदियम अहिनंदीय भव्य पौम वनसंडम, ऐसे कौन है? अभिनंदन जिनेन्द्र को, अभिनंदन जिननाहम, नमिऊण ने नमस्कार करके उवक्कमम वोच्छम उपक्रम अनुयोग द्वार का कथन करते हैं। अभी अभी तक हमने क्या देखा? प्रक्रम। अब देखते उपक्रम। जरा विषय परिचय निकालते हैं। पहले हमने निबंधन देखा, फिर प्रक्रम देखा, अब उपक्रम देखेंगे। पेज नंबर 5, विषय परिचय। उपक्रम नीचे लिखा है ना, प्रक्रम के समान ही उपक्रम के भी ये 6 भेद निर्दिष्ट किए गए, यानी उसमें भी वो 6 निक्षेप लगाएंगे। नाम उपक्रम, स्थापना उपक्रम, द्रव्य उपक्रम, क्षेत्र उपक्रम, काल उपक्रम और भाव उपक्रम। यहाँ कर्म उपक्रम को अधिकार प्राप्त बतलाकर उसके ये 4 भेद निर्दिष्ट किए हैं, यानी यहाँ कर्म उपक्रम की बात बताएंगे, अन्य निक्षेपों की यहाँ चर्चा नहीं। कर्मों में प्रक्रम लगाया, बंद के समय कहाँ कितना प्रदेश समूह होता है उसको देखा। अभी उपक्रम की बात बताएंगे। देखो तो उसमें 4 भेद है, बंधन उपक्रम, उदीर्णा उपक्रम, उपशमना उपक्रम और विपरिणाम उपक्रम। यहाँ प्रक्रम और उपक्रम में विशेषता का उल्लेख करते हुए, विशेषता ने डिफरेंस, प्रक्रम और उपक्रम में क्या भेद है यह बताया है कि प्रक्रम प्रकृति स्थिति और अनुभाग में आने वाले प्रदेशाग्रह की प्ररूपना करता है। हमने देखे ना प्रकृति में कितने प्रदेश आते हैं, स्थिति में कैसे कैसे रचना होती है और अनुभाग में कैसी होती है, वो प्रक्रम में हमने मां देखी थी। आने वाले प्रदेशाग्रह की, यानी बंध की बात है, बंध के समय, जबकि उपक्रम बंध होने के द्वितीय समय से लेकर, ये महत्व की बात है। बंध के समय हमने प्रक्रम बताया और बंधने के बाद द्वितीय समय से लेकर उपक्रम बताएंगे। द्वितीय समय से लेकर सत्व स्वरूप से स्थित कर्म पुद्गलों के व्यापार की प्ररूपना करता है। नहीं समझे? बनते समय तो उसमें परमाणु तो बंधे और उसकी विभाजन उसकी कैसे कैसी होगी, तो स्थिति में कैसे गया, अनुभाग में कैसे गया और प्रकृति में कैसे गया, वो आता है प्रक्रम में, वो बंधने का समय है। और बंधने के बाद वो कर्मों में जो उसके जो प्रदेशों में कुछ वेरिएशन होगा कि नहीं होगा, अपकर्षण उत्कर्षण वगैरह जो कुछ होता है, यानी सत्ता में पड़े पड़े उसमें जो कुछ अवस्थान्तर हो गए वो उपक्रम में बात आ जाएगी। कर्म पुद्गलों के व्यापार की प्ररूपना, यही व्यापारी ने क्या क्या होता है उसमें परमाणु में उसकी बात यहाँ बताई जाएगी। अभी पहला कौन सा है, बंधन उपक्रम, फिर उदीर्णा उपक्रम। अभी बहुत विस्तार से बताया है, ये पढ़ना है कि हम हमारा विषय चालू करेंगे, थोड़े आइडिया। हाँ जरा यहाँ से पढ़ते देखो, बंधनों उपक्रम के भी बंधन उपक्रम, यहाँ प्रकृति व स्थिति आदि के भेद से चार भेद बतलाकर उनकी प्ररूपणा सत्कर्म प्रकृति प्रावृत के समान करना चाहिए ऐसा उल्लेख मात्र किया है। यहाँ यह आशंका उठाई गई है, इनकी प्ररूपणा जैसे महाबंध में की गई है तदनुसार ही वह यहाँ क्यों न की जाए। इसके समाधान में बतलाया है कि महाबंध में चूंकि प्रथम समय संबंधी बंध का आश्रय लेकर वह प्ररूपणा की गई है, अतएव तदनुसार यहाँ उनकी प्ररूपणा करना इष्ट नहीं है। वहां तो बंध के समय क्या क्या होता है वो सब वहां बताया है, वो बात यहाँ नहीं बताई है। यानी केवल यहाँ उसके नाम बता लाकर बाकी तो महाबंध में आने वाली बात है ये बताया। अब कहते उदीर्णा, यानी उदीर्णा उपक्रम, उदयावली बाह्य स्थिति को आदि लेकर, उदयावली बाह्य स्थिति यानी उदयावली के ऊपर का निषेक। उदयावली किसको मालूम है, किसको कहते हैं? देखो जो निषेक रचना हुई है तो उदय के समय से लेकर आवली मात्र जो निषेक है उसको कहते हैं उदयावली। तो जो उदयावली में जो निषेक है उसमें उसकी उदीर्णा नहीं होती। मान लेते ना 16 समय हमने उदयावली के मान लेते, तो 17वां जो निषेक है उसके परमाणु उदीर्ण होकर नीचे आ सकते हैं। 18वां 19 जितनी स्थिति ऊपर की बंदी है उन सारों की उदीर्णा होकर, देखो उदीर्णा होकर इन्हें क्या है, अपकर्षण होकर जो उदयावली में आ मिलते हैं उसको कहेंगे उदीर्णा, और केवल ऊपर के निषेकों में नीचे से आते उसको कहेंगे अपकर्षण। उदयावली में आ मिले तो कहेंगे उदीर्णा। तो कहते कि उदयावली बाह्य स्थिति को लेकर, आदि लेकर यानी वहां से लेकर आगे की स्थितियों के, यानी जो ऊपर के सभी निषेक बंधावली अतिक्रांत प्रदेश पिंड का। ये बंधावली अतिक्रांत क्या है लक्ष्मी जी? उदय की बात नहीं, उदीर्णा। देखो देखो, यानी जिसकी बंध होने के बाद एक आवली व्यतीत हो गई है, किसी भी कर्म की बंधने के बाद एक, अभी आयु छोड़ो, आयु का उदय और उदीर्णा तो जब नेक्स्ट भव में उसका उदय होगा तब होगा, परंतु यहाँ ज्ञानावरण आदि जो बंद रहे, पर बंद रहे तो वहां तो पूर्व में बंधे हुए उसका तो उदय चल ही रहा है, परंतु बंधने के बाद एक आंवली तक तो उसकी उदीर्णा नहीं होगी। उसके बाद नियम से उदीर्णा होकर सत्ता वाले जो उदय में आ रहे परमाणु उसके साथ इसकी उदीर्णा होगी, क्योंकि इसका जो बंध हुआ था उसकी तो आबाधा पड़ी थी, आबाधा ने पूरा निषेक तो नहीं नीचे आ सकता था, पर सभी निषेकों में से कुछ परमाणु उदयावली में आकर खिर जा सकते हैं, उसको यहाँ उदीर्णा कहेंगे। तो बंधावली अतिक्रांत प्रदेश पिंड का, यानी बंध के बाद एक आवली बीत जाने पर, यानी अभी जो बंध के बाद जो सत्ता में पड़े हैं और जिनकी जिनकी आवली पूरी हो गई है, ऐसा जो प्रदेश पिंड है यानी सारे परमाणु है उनका, पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रतिभाग से या असंख्यात लोक प्रतिभाग से अपकर्षण करके उसको उदयावली में देना, इसे उदीर्णा कहा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ये सामान्य से अपकर्षण तो चलता है, तो अपकर्षण में कौन से निषेक में से कितना अपकर्षण होता है, तो कहते हैं उसका अपकर्षण उत्कर्षण भागार नाम की जो संख्या है उससे भाग देने पर उसका एक इतना भाग आया। अब उसमें से अपकर्षित द्रव्य में से कुछ उदयावली में दिया जाएगा और कुछ ऊपर के निषेकों में फिर वापस दिया जाएगा, तो उदयावली में कितना जाता है? तो उसका असंख्यात लोग भाग आ रहे, तो उदयामली थोड़ा जाएगा। और जहाँ जीव की शुद्धोपयोग आदि के वश क्या होता है, वो भागार छोटा होता है, तो अधिक उदयावली में आकर निर्जरा होती है। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण भागार से उदयावली में दिया जाएगा, या छोटा भागार कितना हो सकता है पल्ले का असंख्यात भाग, तो भी उदयावली में दिया जाएगा। इसलिए दो अलग अलग भागार बताए अपकर्षण करके उस, नहीं नहीं असंख्यात नेचुरली रेगुलरली असंख्यात लोक भागार होता है, यानी जितना अपकर्षित हो ना उसको असंख्यात लोक से भाग दिया, तो बहुत छोटा भाग नीचे गया उदयावली में, बाकी पूरा ऊपर ही जिसको ऊपरीतन स्थिति में दिया। पल्योपम का असंख्यात भाग वो श्रेणी वगैरह में होता है जहां उदीर्णा बहुत ज्यादा होती है। अब ये बात हम कल पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पर देखो, अभिप्राय है कि उदयावली को छोड़कर आगे की स्थितियों में से ही प्रदेश पिंड को खींचकर उसे उदयावली में प्रक्षिप्त करने को उदीर्णा कहते हैं। वह दो प्रकार की है, एक एक प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा। अभी हम विस्तार से पढ़ने वाले। एक एक प्रकृति उदीर्णा की प्ररूपणा में प्रथमतः उसके स्वामियों का विवेचन किया गया है। उदाहरणार्थ ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय कर्मों की उदीर्णा के स्वामी का निर्देश करते हुए बतलाया है कि इन कर्मों की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक होती है। क्यों? जिसका उदय है उसकी उदीर्णा होगी। विशेषता इतनी कि क्षीण कषाय के काल में एक समय अधिक आवली मात्र शेष रहने पर उनकी उदीर्णा विच्छिन्न हो जाती है। क्योंकि देखो देखो, अभी हमने आवली 16 समय की मान ली, और उदीर्णा किसकी होती है? जो आवली के ऊपर है उसी की उदीर्णा होती है उदयावली के ऊपर। अब वहां कितने निषेक शेष है, मान लेते हैं 17 समय बाकी है क्षीण कषाय के, तो 17वां जो निषेक है वो नीचे आ जाएगा, नीचे के 6 में जाता है। जब 16 ही निषेक रहेंगे तो उदीर्णा होने का सवाल नहीं है। इसलिए अंतिम उदीर्णा कहाँ होती है? आवली प्लस एक समय है वहां पर, उसके बाद उदीर्णा की विच्छित्ति होती है, ये उसका अर्थ होता है। यानी उदय तो अंतिम समय तक है, ज्ञानावन दर्शन का उदय 12वें के अंतिम समय तक है, अंतिम समय में उसका एक निषेक बाकी है, परंतु उसकी उदीर्णा कब रुकी? जब आवली प्लस एक समय था तब उसकी अंतिम उदीर्णा हुई, उसके ऊपर उदीर्णा होने के लिए आवली के ऊपर कोई निषेक ही नहीं है, ये उसका अर्थ होता है। अभी हम यहां ही रुकेंगे। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देतो।